हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। राविया की बातें अनंत को चुभ रही थी और अनंत की बातें राविया को, पर दोनों ने होठों पर झूठी स्माइल सजा रखी थी, जैसे उन दोनों को सच में एक दूसरे के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है और वे अलग होंगे तो दोनों को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। थोड़ी देर बाद उनकी टेस्ट ड्राइव पूरी हो गई और अनंत ने फाइनल पेमेंट कर दी। गाड़ी की डिलीवरी शाम को होनी थी। अब वे दोनों राविया का लाइसेंस बनाने के लिए चले गए। वे दोनों गाड़ी की बैक सीट पर बैठे थे और ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर रहा था। राविया सीट पर पीछे टिकते हुए खिड़की से बाहर देखने लगी। कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी रही, ऐसी खामोशी जिसमें बातें कम और ताने ज्यादा छुपे होते थे। अचानक राविया ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, एक बात बताओ अनंत। अनंत ने हल्का सा सिर उसकी तरफ घुमाया। राविया ने भौहें चढ़ाते हुए आधा मजाक आधा गुस्से में बोला, मुझे लाइसेंस दिलवा के एक्सीडेंट में मरना चाहते हो क्या? क्योंकि मैं ड्राइविंग करूंगी तो एक्सीडेंट होना तो तय है। ड्राइवर ने रियर मिरर में झट से नजर डाली, लेकिन फिर समझदारी से आगे देखने लगा और फिर गाड़ी में पार्टीशन ऑन कर दिया। अनंत एक पल को चुप रहा, फिर बहुत सुकून से, जैसे दिल से निकली बात हो, बोला, मरना तो मैं तुम्हें देखकर रोज ही मरता हूँ राविया। राविया का दिल एक सेकंड के लिए रुक सा गया। वो झट से उसकी तरफ मुड़ी। ये क्या घटिया लाइन थी, उसने झुंझलाकर कहा। कोई सीरियस बात को भी ड्रामा बना देते हो। अनंत ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, ड्रामा नहीं है, बस सच्चाई है। तुम सामने होती हो तो सांसें भूल जाती हूँ और जब नहीं होती तब भी चैन नहीं मिलता। राविया ने गंदा सा मुंह बनाते हुए कहा, ये फ्लर्टिंग कोर्स मुझे भी करवाना, मैं भी तुम्हारी ऐसी बातों का जवाब इसी तरीके से देना चाहती हूँ। अनंत ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, बी माई स्टूडेंट, तुम्हें मैं इससे भी ज्यादा अच्छा सिखा सकता हूँ। राविया ने उसकी तरफ तेज नजर डाली। ज्यादा उड़ो मत टीचर साहब, उसने ताना कसते हुए कहा, मैं बहुत जल्दी सीख जाती हूँ। अनंत ने हल्की हंसी दबाई और आराम से सीट पर टिकते हुए बोला, यही तो डर है राविया, कहीं तुम मुझसे भी आगे ना निकल जाओ। राविया ने आंखें घुमाई, लेकिन इस बार होठों पर आई हल्की सी मुस्कान वो झूठी नहीं थी। डरना तुम्हें पड़ेगा, उसने कहा, अगर मैं सीखी तो तुम्हारी ही लाइन्स तुम पर इस्तेमाल करूंगी। अनंत ने उसकी तरफ झुकते हुए आवाज थोड़ी धीमी कर ली, तो फिर तैयार रहो क्योंकि मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। राविया ने उसकी आंखों में झांकते हुए जवाब दिया, और मैं आसान स्टूडेंट नहीं हूँ। कुछ सेकंड के लिए दोनों की नजरें टकराई। वो टकराव किसी लड़ाई का नहीं था, बल्कि उस खिंचाव का था जिसे दोनों ही नकारने की पूरी कोशिश कर रहे थे। गाड़ी एक झटके से धीमी हुई। ड्राइवर की आवाज आई, मैडम आरटीओ ऑफिस आ गया है। राविया ने तुरंत नजरें हटा ली और दरवाजा खोलते हुए बोली, चलो टीचर, आज का लेसन यहीं खत्म करते हैं। अनंत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं राविया, ये तो बस इंट्रोडक्शन था। राविया ने हैरानी से अनंत की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज अनंत को हुआ क्या है। वही अनंत बेचारा कैसे उसे बताए कि जैसे जैसे कोर्ट की डेट नजदीक आ रही थी उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। पहले तो उसे लगा था 3 महीने कितना लंबा वक्त है, वो कैसे अनजान लड़की के साथ बिताएगा, लेकिन अब जैसे जैसे ये 3 महीने बीत रहे थे उसका कलेजा मुंह को आने को हो गया था। अब वो कैसे भी करके राविया को अपने पास रखना चाहता था, कैसे भी करके अपने दिल की बात उसे बताना चाहता था, लेकिन ऐसे फ्लर्टिंग ट्रिक राविया को सिर्फ मजाक लग रही थी। उसके दिल में भी अनंत के लिए फीलिंग्स थी, लेकिन उसे डर था कि कहीं अनंत उसका मजाक न बना दे जैसे वो हर बात का बना देता है, इसलिए वो शांत थी। वहीं दूसरी तरफ वेदांत भी अपनी टोमेटो के साथ शॉपिंग करने बाहर आ चुका था, लेकिन यहाँ विहा सारी चीजों को देखकर बस मुंह ही बना रही थी क्योंकि उसे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। आखिर में वो थककर वापस वेदांत के पास आकर सोफे पर बैठते हुए बोली, वेदांत मुझे यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। वेदांत ने प्यार से उसका सर सहलाया और फिर शिद्दत से उसके माथे पर किस करते हुए बोला, कोई बात नहीं बेटा, हम दूसरी शॉप पर चलेंगे, वहाँ कुछ पसंद आ जाएगा। ऐसे दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। विहा ने कुछ देर शांति से वेदांत के चेहरे को देखा और फिर आगे बढ़कर उसके गाल पर हल्के से किस करते हुए बोली, आप अभी तक थके नहीं हो मेरे साथ घूम घूम कर? पहली बार विहा ने आगे बढ़कर उसे किस किया था। वेदांत की खुशी का तो ठिकाना नहीं था। उसने विहा को अपने करीब करते हुए अपनी बाहों में कसकर कहा, नहीं टोमेटो, अगर तुम मुझे ऐसे ही किस करती रहोगी तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ शॉपिंग ही करता रहूंगा और कभी तुमसे शिकायत नहीं करूंगा कि मैं थक गया हूँ। विहा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है तो फिर अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए, ये जर्नी बहुत खतरनाक होने वाली है। वेदांत हल्का सा मुस्कुराया और फिर उसके पास झुकते हुए उसके गाल को चूम कर बोला, वो तो मुझे उसी दिन पता चल गया था जिस दिन मैंने पहली बार तुम्हें देखा था कि तुम्हारे साथ हर जर्नी खतरनाक ही होने वाली है, आसान नहीं। उसकी इस बात पर विहा खिलखिलाकर हंसने लगी। वहीं वेदांत सुकून से उसे देख रहा था। उसे यही तो चाहिए था कि उसकी टोमेटो पूरा दिन बस हंसती मुस्कुराती रहे। शाम के करीब 5 बजे सब लोग निमानी हाउस के पार्किंग एरिया में खड़े थे जहां अनंत की नई गाड़ी आई थी और अब उसका पूजन करना था।
घर में जब भी कोई ऐसा सामान आता है तो पहले उसकी आरती की जाती है, उस पर कलावा बांधा जाता है और स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है, क्योंकि ये सब करना शुभ माना जाता है। उन सब में सबसे छोटी विहा थी, इसीलिए ये काम उसी से करवाया जा रहा था और वो खुश होते हुए ये सब कुछ कर रही थी। बाकी पूरा परिवार साइड में खड़ा बस उसे देख रहा था। राव्या सबको मिठाई बांट रही थी, धनतेरस की शॉपिंग सबकी हो चुकी थी। राव्या तो एक्साइटेड थी विहा और अनाही से पूछने के लिए कि आखिर उनके पतियों ने उन्हें क्या दिया है, क्योंकि उसका गिफ्ट तो इतना बड़ा था कि छुपाने से भी छुप नहीं रहा था, सबको पता चल गया था। लेकिन अनाही और विहा को क्या मिला है ये किसी को नहीं पता था। वहीं रूहान सबसे अलग छोटा सा मुंह बनाए खड़ा था। उसे ऐसे देखकर अनाही ने गहरी सांस ली और फिर धीमे कदमों से उसके पास जाकर बोली, क्या हुआ है कि हर एक दो घंटे बाद आपका मुंह क्यों सड़ जाता है? कौन सी बीमारी है आपको? रूहान ने जल्दी से कहा, मैंने विहा और राव्या की बातें सुनी थी। आप तीनों आज रात को साथ में बैठकर मेहंदी लगाने वाले हो ना, और वहाँ हमें नहीं आने दोगे, तो मैं सोच रहा हूँ मैं आपके बिना कैसे रहूँगा और मुझे बुरा लग रहा है। उसकी इस बात पर अनाही को हंसी आ गई। उसने धीरे से रूहान का हाथ पकड़ते हुए कहा, बस एक रात की बात है और पूरी रात भी नहीं, बस मैं उनके साथ दो तीन घंटे रहूंगी, उसके बाद आपके पास आ जाऊंगी। अनाही की ये बात सुनकर रूहान को सब्र करना पड़ा। करीब दो घंटे बाद विहा, राव्या और अनाही तीनों वेदांत के कमरे में थे। अनाही विहा के एक हाथ पर मेहंदी लगा रही थी तो वहीं दूसरे हाथ पर वेदांत मेहंदी लगा रहा था। उसे बहुत खुशी मिल रही थी अपनी टोमेटो के छोटे छोटे हाथों पर अपना नाम लिखते हुए। उसके होठों की स्माइल जाने का नाम नहीं ले रही थी। वहीं राव्या अनाही के पैरों के पास बैठकर उसके पैरों पर मेहंदी लगा रही थी। वहां सबसे ज्यादा खूबसूरत मेहंदी राव्या को लगानी आती थी। ये देखकर अनाही काफी इम्प्रेस हुई थी, क्योंकि राव्या को बाकी लड़कियों वाले काम बिल्कुल नहीं आते थे, जैसे मेकअप करना, खाना बनाना, डेकोरेशन करना, लेकिन उसे मेहंदी बहुत अच्छी आ रही थी।
वहीं बेचारा रूहान और भी ज्यादा परेशान हो गया जब उसे पता चला कि वेदांत तो विहा के हाथों में मेहंदी लगा रहा है, लेकिन वो नहीं लगा सकता है, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी सब लोगों के सामने ऐसी नहीं है कि वो ऐसी हरकतें कर सके। वो तो सबके सामने इमोशनलेस बनकर रहता है। वो चाहकर भी वो सब कुछ नहीं कर सकता जो वो अपनी मैडम जी के लिए करना चाहता था।